प्रभु परमेश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, विलम्ब से कोप करने वाला और अति करुणामय है।
स्थापित है स्वर्ग में प्रभु का जीवित वचन, सृष्टि निर्माता भी है यही वचन। प्यासी आत्मा की भी तृप्ति है यही वचन। स्वर्गीय जीवन रोटी, आंखों की ये ज्योति, ये सत्य वचन, ये जीवित वचन, सबसे उत्तम ज्ञान यही है। आओ सुने सत्य वचन।
कार्यक्रम सत्यवचन सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा प्रेम भरा नमस्कार। परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना कितना लाभप्रद है, ये हमारे जीवन के लिए सही दिशा निर्देश प्रदान करता है। इसके साथ आत्मिक विकास व उन्नति के लिए भी अनिवार्य है। तो आइए आज के बाइबल अध्ययन में हम भाग लें, किंतु इससे पूर्व की आज का ये अध्ययन आरम्भ करें, मन की तैयारी के लिए सुनिए एक मधुर गीत।
कुछ बात तो लोगों को बुरा प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आपको हमारा नमस्कार। आशा है आप प्रभु की कृपा से कुशल और आनंदित हैं और हमारे सत्य वचन बाइबल अध्ययन कार्यक्रम का अध्ययन करने के लिए तैयार हैं। हमें विश्वास है कि आप निरंतर हमारे कार्यक्रम को सुनते हैं और परमेश्वर के वचन से आत्मिक लाभ उठाते हैं, क्योंकि बहुत से श्रोता भाई बहन ऐसे हैं जो हमको निरंतर पत्र लिखते हैं और अपने पत्रों के द्वारा अपनी आशीषों से हमको अवगत कराते हैं। अनेक श्रोता भाई बहन हमको अपने प्रश्नों के द्वारा प्रोत्साहित करते हैं, क्योंकि आपके प्रश्न इस बात का प्रमाण है कि आप वचन को ध्यानपूर्वक सुनते हैं और उसके विषय में और भी अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। किंतु अभी भी अनेक श्रोता भाई बहन ऐसे हैं जो परमेश्वर के वचन को, हमारे कार्यक्रम को प्रतिदिन सुनते तो हैं किंतु हमें पत्र नहीं लिखते हैं। मित्रवर, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि जब आप हमारे कार्यक्रम को सुनते हैं तो पत्र लिखने का कष्ट कीजिए। आप सोचते होंगे कि हम क्या लिखें, तो श्रोता आप अपने पत्र में हमसे प्रश्न कर सकते हैं, हमें कोई सुझाव दे सकते हैं। यदि आपका किसी विषय पर कोई संदेह है तो आप उसको भी हमको लिखकर भेज सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि आपकी कोई समस्या है या आप किसी विषय के लिए प्रार्थना कराना चाहते हैं तो वो भी आप हमको लिखकर भेज सकते हैं। आप अपनी व्यक्तिगत समस्या को भी हम तक पहुंचा सकते हैं ताकि हम आपकी समस्या को परमेश्वर के समक्ष रखें। हमारा विश्वास है कि प्रभु आपकी अवश्य सहायता करेगा और आपकी समस्या का समाधान करेगा। सो जब आप हमारे कार्यक्रम को सुन रहे हैं तो हमें पत्र लिखना ना भूलें। जैसा कि आपको हम बता दें कि इन दिनों हम परमेश्वर के वचन की रूपरेखा के विषय में पढ़ रहे हैं। हम बाइबल अध्ययन किस प्रकार से करें उसके विषय में हम एक रूपरेखा आपको बताना चाहते हैं। किंतु इससे पूर्व कि हम रूपरेखा को आपके समक्ष रखें, हम उन विषयों पर भी विचार करना चाहते हैं कि बाइबल क्या है, बाइबल क्यों महत्वपूर्ण है और क्या बाइबल वास्तव में परमेश्वर का वचन है या परमेश्वर की ओर से है। तो पिछले बाइबल अध्ययन में हमने इसी विषय पर विचार किया था और हमने देखा कि अनेक परिवर्तित जीवन इस बात का प्रमाण है कि बाइबल पवित्र शास्त्र परमेश्वर का वचन है। भविष्यद्वाणियों की पूर्ति इस बात का प्रमाण है कि बाइबल पवित्र शास्त्र परमेश्वर की ओर से है। हमने आपको इस बात के विषय में बताया कि परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने के द्वारा अनेक लोगों ने ये साक्षी दी है कि मैंने शराबखोरी से छुटकारा पाया, व्यभिचार से, हत्या से, घूसखोरी से, चोरी से, लोभ से और परमेश्वरहीनता के जीवन से छुटकारा पाया है। और उन्होंने ये साक्षी दी है कि बाइबल पवित्र शास्त्र द्वारा मैंने जीवित व सच्चे सृष्टिकर्ता परमेश्वर को जाना और पहचाना है। मुझे एक श्रोता के विषय में स्मरण आ रहा है। इस व्यक्ति का जीवन अनेक समस्याओं से भरा हुआ था और वह पाप में ऐसा डूबा हुआ था कि जैसा कोई भी पापी डूब सकता है, जैसा किसी समय मैं डूबा हुआ था या आप डूबे हुए थे। इस व्यक्ति ने हमारे रेडियो कार्यक्रम को सुनना आरंभ किया और ये निरंतर उस कार्यक्रम को सुनता रहा। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं कि जिन्होंने एक बार कार्यक्रम को सुना है, सुसमाचार को सुना और उनके हृदय परिवर्तित हो गए। किंतु ये व्यक्ति कुछ भिन्न प्रकार का व्यक्ति था। इसे पर्याप्त समय तक परमेश्वर के वचन को सुनने का अवसर मिला और सुनते सुनते ये परमेश्वर के वचन का विरोधी बन गया। वो बहुत क्रुद्ध हो गया और बाद में उसने बताया कि जब आप रोमियो की पत्री का अध्ययन रेडियो पर करा रहे थे और आपने ये बताया कि तुम तो पापी हो, तो मुझे बहुत क्रोध आया। मुझे इतना रोष आ गया कि यदि ये रेडियो प्रचारक मुझे कहीं मिल जाए तो मैं इसकी नाक पर ऐसा मुक्का जमाऊं कि इसकी नाक पिचक जाए। मित्रवर, मैं सोचता हूं कि वो ऐसा कर सकता था क्योंकि वो आयु में मुझसे कम और शक्ति में अधिक था, किंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो व्यक्ति मुझे खोज नहीं पाया। अंत में इस व्यक्ति का मन मसीह यीशु की ओर फिर गया। परमेश्वर के वचन ने उसे बातचीत की, उसे समझाया, उसे सिखाया और एक दिन उसका हृदय परिवर्तित हो गया। उसका पुराना जीवन नया हो गया। उसने अपने पाप में जीवन से, पापमय हृदय से छुटकारा प्राप्त किया। वो नई सृष्टि बन गया। उसका हृदय परमेश्वर का हृदय हो गया। जो कुछ परमेश्वर ने उसके जीवन में किया वह वास्तव में अद्भुत और आश्चर्यजनक है। मित्रवर, हम बार बार अनेक व्यक्तियों के मुंह से इस साक्षी को सुनते हैं। युवा तथा वृद्ध व्यक्तियों ने अपने जीवन का उद्देश्य पा लिया, जीवन में भरपूरी आ गई, परिवार टूटने से बच गए, टूटे परिवार पुनः बस गए। अनेक लोग व्यक्तिगत रूप से शराबखोरी तथा नशीले पदार्थों के सेवन से छूट गए, व्यभिचारी जीवन से छूट गए। श्रोता, लोगों ने वास्तव में मसीह यीशु के समीप आकर अपने जीवनों को परिवर्तित कर लिया और ये केवल पवित्र बाइबल के अध्ययन के द्वारा संभव हुआ। केवल पवित्र बाइबल एक दुष्ट पापी को पवित्र संत के रूप में बदल सकती है। हम प्रयास तो कर सकते हैं किंतु वो प्रयास क्षणिक है। कुछ क्षण के पश्चात मनुष्य पुनः उसी जीवन में वापस चला जाता है, किंतु जब वो परमेश्वर के वचन को पढ़ता है और परमेश्वर की सामर्थ्य पर विश्वास लाता है और परमेश्वर पर अपने विश्वास को व्यक्त करता है और परमेश्वर की विश्वास योग्यता को स्वीकार करता है, और तब वह अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंप देता है और तभी उसका जीवन एक परिवर्तित जीवन हो जाता है। तब पांचवी बात यहां पर हमारे सामने ये आती है कि परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर के वचन को वास्तविक बनाता है। परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर के वचन को वास्तविक बनाता है। ये कार्य किस प्रकार होता है, सो आइए इसका एक उदाहरण हम देखते हैं। प्रेरितों के कार्य नामक पुस्तक, प्रेरितों के कार्य, उसका दूसरा अध्याय 22 पद से लेकर 41वें पद को आप हमारे साथ देखिए। यहां प्रेरित पौलुस परमेश्वर के पवित्र आत्मा से भरकर इसराइलियों के समक्ष भाषण दे रहे हैं। वो इस प्रकार से कहते हैं, हे इसराइलियों, इन बातों को सुनो। यीशु नासरी एक ऐसा मनुष्य था जिसको परमेश्वर ने सामर्थ के कार्य, आश्चर्य कर्मों और चिन्हों से जो उसने उसके द्वारा तुम्हारे समक्ष किए तुम पर प्रकट किया। जैसा कि तुम स्वयं जानते हो, इसी मनुष्य को जो परमेश्वर की पूर्व निश्चित योजना और पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया था, तुमने विधर्मियों के हाथों क्रूस पर कीलों से ठुकवा कर मार डाला। परंतु परमेश्वर ने मृत्यु की पीड़ा को मिटाकर उसे पुनः जीवित कर दिया, क्योंकि मृत्यु के वश में रहना उसके लिए असंभव था। क्योंकि दाऊद उसके विषय में यूं कहता है, मैं सर्वदा प्रभु की ओर निहारता रहा, क्योंकि वह मेरी दाहिनी ओर है जिससे मैं डगमगा ना जाऊं। इसलिए मेरा हृदय आनंदित हुआ, वह मेरी जीभ हर्षित हुई और मेरा शरीर भी आशा में बना रहेगा, क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में नहीं रहने देगा और ना अपने पवित्र जन को सड़ने देगा। तूने मुझे जीवन का मार्ग बताया है, तू मुझे अपने दर्शन के द्वारा आनंद से भर देगा। भाइयों, मैं तुमसे कुलपति दाऊद के विषय में विश्वास पूर्वक कह सकता हूं कि वह मर गया और दफनाया भी गया और उसकी कब्र आज तक हमारे यहां विद्यमान है। क्योंकि वह एक नबी था, अतः जानता था कि परमेश्वर ने उससे शपथ खाई थी कि वह उसके वंश में से किसी एक व्यक्ति को उसके सिंहासन पर बिठाएगा। इसलिए उसने होने वाली बातों को पहले से देखकर मसीह के पुनरुत्थान के विषय में कहा, वो ना तो अधोलोक में छोड़ा गया और ना ही उसकी देह सड़ने पाई। इसी यीशु को परमेश्वर ने जीवित किया, जिसके हम सब साक्षी हैं, और इसलिए परमेश्वर के दाहिने हाथ पर सर्वोच्च पद पाकर और पिता से पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा प्राप्त करके उसने इसे उंडेल दिया, जिसे तुम देखते हो और सुनते भी हो। क्योंकि दाऊद तो स्वयं स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, परंतु वह आप ही कहता है, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी ना बना दूं। और इसलिए इसराइल का संपूर्ण घराना निश्चय जान ले कि परमेश्वर ने उसे प्रभु और मसीह दोनों ही ठहराया, इसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया। उन्होंने जब यह सुना तो उनके हृदय छिद गए और वे पतरस तथा अन्य प्रेरितों से पूछने लगे, भाइयों हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और यीशु मसीह के नाम से तुम में से प्रत्येक बपतिस्मा ले कि तुम्हारे पापों की क्षमा हो, और तुम पवित्र आत्मा का वरदान पाओगे, क्योंकि वह प्रतिज्ञा तुम्हारे और तुम्हारी संतान के लिए और उन सब के लिए है जो दूर दूर हैं, अर्थात वे सब जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। और बहुत सी अन्य बातों से साक्षी दे देकर वह उनसे आग्रह करता रहा कि इस कुटिल पीढ़ी से बचो। अतः जिन लोगों ने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया, और उसी दिन उनमें लगभग 3,000 व्यक्ति सम्मिलित हो गए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि शमौन पतरस ने यह भाषण पवित्र आत्मा में भर कर दिया। पवित्र आत्मा ने उस वचन को सुनने वालों के लिए वास्तविक बनाया और इनके हृदय छिद गए। जब परमेश्वर के पवित्र आत्मा ने परमेश्वर के वचन को सुनने वालों के लिए वास्तविक बनाया तो सुनने वालों के हृदय छिद गए। उनको उस वचन का महत्व महसूस हुआ, उन्होंने वचन को ग्रहण किया, और उसी दिन 3,000 लोगों ने बपतिस्मे द्वारा साक्षी दी और मंडली में सम्मिलित हो गए। यहां प्रचारक या सुनाने वाला मात्र एक यंत्र है, किंतु वचन को सुनने वाले के लिए वास्तविक बनाने का कार्य पवित्र आत्मा का है। जी हां मित्र, सुनाने वाला मात्र एक यंत्र है, किंतु उस वचन को उस व्यक्ति के लिए जो सुन रहा है वास्तविक बनाने का कार्य पवित्र आत्मा का है। अब आइए हम पवित्र बाइबल के संबंध में कुछ अन्य प्रश्नों को भी देखें। यह हमारा पहला प्रश्न है, प्रकाशन अर्थात रेवलेशन क्या है? अंग्रेजी भाषा में प्रकाशन को रेवलेशन कहते हैं, उर्दू में इसको मुकाशफा कहते हैं। तो ये प्रकाशन क्या है? मित्रवर, प्रकाशन का अर्थ है कि परमेश्वर स्वयं बोला और मनुष्य को अपना संदेश दिया। प्रभु की यह वाणी है, ये वाक्यांश 2500 बार पवित्र बाइबल में प्रयोग हुआ है। और इस प्रकार परमेश्वर नहीं चाहता कि इस विषय में आपको कोई दुविधा हो कि परमेश्वर बोला, क्योंकि 2500 बार ये बात पवित्र बाइबल में आई है। और इसलिए आप विश्वास करें कि परमेश्वर का वचन पवित्र बाइबल परमेश्वर की ओर से है। प्रकाशन का अर्थ प्रकटीकरण भी है। इब्रानियों की पत्री उसके प्रथम अध्याय के पहले और दूसरे पदों पर मेरे साथ ध्यान दीजिए। यह इस प्रकार से लिखा है, प्राचीन काल में परमेश्वर ने नबियों के द्वारा पूर्वजों से बार बार तथा अनेक प्रकार से बातें करके इन अंतिम दिनों में हमसे अपने पुत्र के द्वारा बातें की हैं, जिसे उसने सब वस्तुओं का उत्तराधिकारी ठहराया और जिसके द्वारा उसने संपूर्ण सृष्टि की रचना भी की। तो यहां प्रभु का वचन स्पष्ट करता है कि प्राचीन काल में परमेश्वर ने नबियों के द्वारा स्वयं को प्रकट किया और अंतिम दिनों में उसने अपने पुत्र मसीह यीशु के द्वारा स्वयं को प्रकट किया। ये मसीह यीशु वो है जिसे परमेश्वर ने समस्त वस्तुओं का उत्तराधिकारी अर्थात वारिस ठहराया है। जब हम दो व्यक्तियों को एक दूसरे से बहुत घनिष्ठ पाते हैं तो उनके मध्य जो सबसे महत्वपूर्ण वस्तु होती है वो है संचार, अर्थात बातचीत, एक दूसरे तक संदेश पहुंचाना। मनुष्य के हृदय की भावनाओं को व्यक्त करने में और उन्हें एक दूसरे के समीप लाने में सबसे महत्वपूर्ण सेवा रहती है डाक तार विभाग की या टेलीफोन विभाग की। दूर प्रदेश से जब पति अपनी पत्नी को पत्र लिखता है या टेलीफोन करता है, पुत्री या पुत्र अपने माता पिता को पत्र लिखते हैं, प्रेमी प्रेमिका को पत्र लिखता है या उसको टेलीफोन करता है और उसका उत्तर प्राप्त करता है, ये समस्त क्रिया बातचीत या संचार कहलाती है। ये अपने हृदय को व्यक्त करना होता है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के समक्ष किसी साधन के द्वारा, पत्र के द्वारा, टेलीफोन के द्वारा या किसी अन्य साधन से, टेलीग्राफ के द्वारा, वो अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है। ये अपने हृदय को व्यक्त करना होता है और यही संचार कहलाता है। मेरा हृदय अत्यंत वेदना से भर गया जब मैंने एक ऐसी महिला के विषय में पढ़ा जो ना बोल सकती थी और ना सुन सकती थी। वो बिना किसी संचार के, बिना किसी संपर्क के, साधन के जीवन व्यतीत कर रही थी। अब इन समस्त बातों के आधार पर मैं ये कहना चाहता हूं कि आप भी इसे स्वीकार करने को तैयार हो जाएं कि परमेश्वर ने भी एक ऐसे प्राणी से बातचीत की है, संचार किया है, जो सबसे बुद्धिमान प्राणी है और जिसे परमेश्वर ने अपनी समानता और अपने स्वरूप में रचा है। मित्रवर्ग, आपस में बातचीत, संचार व्यवस्था अत्यंत आवश्यक है। यदि आपके पास भी संचार व्यवस्था नहीं है या आप अपने आप को व्यक्त नहीं कर सकते, अपने हृदय को व्यक्त नहीं कर सकते, तो आपका जीवन वास्तव में उस महिला के समान हो जाएगा जो ना सुन सकती थी और ना बोल सकती थी। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि परमेश्वर ने एक ऐसे प्राणी से बातचीत की है, संचार किया है, जो इस सृष्टि का सबसे बुद्धिमान प्राणी है और जिसे परमेश्वर ने अपनी समानता और अपने स्वरूप में रचा है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि इब्रानियों की पत्री के लेखक के अनुसार परमेश्वर पुराने नियम में नबियों द्वारा मानवता से बोला और अब वह अपने पुत्र मसीह के द्वारा बोला। परमेश्वर ने पुराने समय में नबियों के द्वारा अपने लोगों से, मनुष्य से, मानव जाति से बातचीत की है, किंतु ये परमेश्वर इस युग में, वर्तमान युग में, अपने पुत्र के द्वारा मनुष्य से बातचीत करता है, संचार करता है। और इस प्रकार दोनों प्रकाशन, चाहे पुराने नियम के हों या नए नियम के हों, दोनों ही परमेश्वर का वचन है। दोनों के द्वारा परमेश्वर मनुष्य से बोलता है और बोला है। पवित्र बाइबल में 66 पुस्तकें हैं और उन सभी के द्वारा परमेश्वर हमसे बोला है। किसी बाइबल पाठक ने लिखा है इस प्रकार से, उसके उसका कथन है, आप भी सुनिएगा। इस पुस्तक में परमेश्वर का ज्ञान भरा है। वो बाइबल पाठक कहता है कि इस पुस्तक में परमेश्वर का ज्ञान भरा है। इसमें मनुष्य की दशा और उद्धार का मार्ग है। मनुष्य की क्या दशा है? मनुष्य पापी है और उसको उद्धार चाहिए, और इस पुस्तक में उद्धार का मार्ग दिया हुआ है। इसमें हठीले पापी का विनाश तथा विश्वास लाने वाले के लिए खुशी और आनंद भरा हुआ है। इसको पढ़ना समझदारी प्राप्त करना है, इस पर विश्वास लाना सुरक्षित होना है और इसका अभ्यास करना पवित्र बनाना है। इसमें आपका मार्गदर्शन करने की पर्याप्त सामग्री है, आपकी आत्मिक तृप्ति के लिए पर्याप्त भोजन है और आपको प्रसन्न रखने के लिए भरपूर आनंद व शांति है। ये यात्रियों के लिए मानचित्र है और तीर्थ यात्रियों के लिए छड़ी है। ये वायुयान चालक के लिए कंपस अर्थात दिशा प्रदर्शक है, ये सिपाही की तलवार है और मसीही का चरित्र है। यहां स्वर्गलोक की पुनर्प्राप्ति है, इसमें स्वर्ग खुला हुआ है और नरक के द्वार बंद हैं। मसीह इसका गौरवशाली विषय है, यह हमारी भलाई के लिए है और इसका अंत परमेश्वर की महिमा है। यह हमारे हृदय पर शासन करती और हमारे कदमों का मार्गदर्शन करती है। इसे मंद गति से पढ़ो, बार बार पढ़ो तथा प्रार्थना के साथ पढ़ो। ये तुम्हें तुम्हारे जीवन काल में दी गई है। न्याय के दिन ये खोली जाएगी और सर्वदा तक स्मरण की जाती रहेगी। इसमें सबसे उच्चतम श्रेणी का उत्तरदायित्व है। ये परिश्रम का सबसे महान प्रतिफल प्रदान करेगी और उन सबको दोषी ठहराएगी जो इसकी बातों को तुच्छ जानते हैं। मित्रवर, ये लेखक सत्य कहता है। क्या आप इस बात पर विश्वास करते हैं? यदि हां, तो आप आज से परमेश्वर के वचन को अपने जीवन का अंग बनाइए, इसका अध्ययन कीजिए, इस पर ध्यान कीजिए, इसमें खोजिए कि परमेश्वर आपसे क्या कहना चाहता है, क्योंकि इसके द्वारा परमेश्वर आपसे बोलता है। तब प्रकाशन के पश्चात हमारा अगला विषय है प्रेरणा। प्रेरणा हमारा दूसरा महान विषय है, किंतु इस विषय को हम यहीं पर रोक देते हैं। अगले कार्यक्रम में हम इस विषय के साथ आपसे भेंट करेंगे। हमें आशा है आप इस बाइबल अध्ययन के द्वारा लाभ उठा रहे हैं, इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप जो कुछ भी इस अध्ययन के द्वारा प्राप्त करते हैं, आप हमें एक पत्र के द्वारा सूचित करें, ताकि हम भी आपकी आशीषों में सहभागी हो सकें। अब आज के कार्यक्रम को समाप्त करने की अनुमति दें। प्रभु आपको आशीष दे और आपकी सहायता करे। आमीन।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। प्रिय श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको लाभ पहुंचा होगा। हम आशा करते हैं कि परमेश्वर के वचन ने आपसे बात की है और इसके द्वारा आपको आत्मिक आशीष मिली है। यदि आज के कार्यक्रम से संबंधित आपके हृदय में कोई प्रश्न या संदेह है, तो आप हमें इस पते पर अवश्य लिखकर भेजें। इस विषय में हम आपकी पूरी पूरी सहायता करेंगे। हमारा पता है कार्यक्रम सत्यवचन, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम सत्यवचन, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। तो इसी के साथ आज के कार्यक्रम का समय अब समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।